आज है जुलाई महीने की पहली तारीख, दिन सोमवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। क्रिकेट विश्व कप के एक अहम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 31 रनों से हराया।
नहीं, डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं है, एंड ऑफ द डे इंडिया को एक झटका चाहिए था, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे।
सालाना अमरनाथ यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच आज से आरंभ। मैक्सिको की सीमा से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश में 6 साल की बच्ची की मौत से उठे सवाल।
The Trump administration through the attorney general new law पास की है। ट्रंप ने बहुत नमे जजेस हायर किए एंड मेनी ऑफ देम हैव नो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस।
साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। सूडान में डॉक्टरों के अनुसार सैन्य शासन के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों में 5 लोगों की मौत हो गई है। यहां हजारों लोग नागरिक शासन की मांग करते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राजधानी खार्टूम में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इन मौतों के लिए प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मौजूदा सैन्य सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी जनरल मोहम्मद हमदान ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के बीच ही स्नाइपर्स शामिल थे जिन्होंने लोगों को निशाना बनाया। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो मतभेदों का फायदा उठाना चाहते हैं और हमारे लिए परेशानी खड़ी करना चाहते हैं। हमने कल चेतावनी दी थी, मार्च को सुरक्षा देना सुरक्षा बलों का काम है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसमें कब घुसपैठिए शामिल हो जाएंगे। कई जगहों से स्नाइपर्स ने लोगों पर हमला किया, हम स्थितियों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे एक वरिष्ठ अधिकारी जनरल मोहम्मद हमदान के शब्द। मेक्सिको से अमेरिका जाने के लिए रियो ग्रांड नदी पार करते हुए डूबने वाले पिता और बच्ची का मृत शरीर एल सल्वाडोर पहुंच गया है। उन्हें सोमवार को दफनाया जाएगा। कुछ दिनों पहले 25 साल के ऑस्कर मार्टिनेस और उनकी 2 साल की बेटी की एक मार्मिक तस्वीर सामने आई थी जिसमें दोनों के मृत शरीर पेट के बल नदी में डूबे हुए मिले थे। ऑस्कर मार्टिनेस एल सल्वाडोर छोड़कर मेक्सिको के रास्ते अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। इस तस्वीर पर लोगों ने हैरानी और नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद अवैध अप्रवासन के मुद्दे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियों पर बहस शुरू हो गई थी। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी संख्या में हुई गे परेड मार्च को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। यह परेड मैनहट्टन से शुरू होकर स्टोन वॉल इन पर खत्म हुई। यह वही बार है जिसमें 1969 में एलजीबीटी समुदाय पर हुई पुलिस रेड के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। स्टोन वॉल राइट्स की 50वीं वर्षगांठ पर यह मार्च निकाला गया था। वहीं तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुई ऐसी ही गे प्राइड परेड में पुलिस और लोगों में झड़प हो गई। मेन स्क्वायर पर इकट्ठा हुए हजारों लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला में विपक्ष के नियंत्रण में चल रही संसद में सुरक्षा बलों की हिरासत में हुई एक सैन्य अधिकारी की मौत की जांच की मांग की गई है। नौसेना में कैप्टन रफाइल अकोस्टा उन 13 लोगों के समूह में शामिल थे जिन्हें इस महीने गिरफ्तार किया गया था। उन पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ साजिश करने का आरोप था। वेनेजुएला प्रशासन ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी है। वहीं विपक्षी नेता खुआन गोइदो ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए अकोस्टा की मौत की जानकारी दी और कहा, हम नौसेना के कप्तान रफाइल अकोस्टा की मौत की पुष्टि करते हैं। मंगलवार को हमने नेशनल असेंबली में 6 अन्य अधिकारियों के साथ उनके लापता होने और अपहरण की बात कही थी। आज उनकी मौत के बाद उन्हें क्रूरता से प्रताड़ित किए जाने की पुष्टि हो गई है। ये थे वेनेजुएला में विपक्षी नेता खुआन गोइदो के शब्द। सीरिया में मीडिया का कहना है कि इजरायली युद्धक विमानों ने होम्स और राजधानी दमिश्क शहर में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। रिपोर्टों के मुताबिक सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले पर जवाबी कार्रवाई की है। इजरायली सेना के प्रवक्ता इन रिपोर्टों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि अमेरिका के विरोध के बावजूद खरीदे गए रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी 10 दिनों के अंदर हो जाएगी। राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G20 शिखर सम्मेलन में उनसे कहा था कि इस सौदे के कारण तुर्की पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। बीबीसी समाचार।
Yeah. ये BBC हिंदी सेवा है, आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी। मेरा नाम है संदीप सोनी। क्रिकेट विश्व कप में कल एक ऐसा मुकाबला हुआ जिसके बाद विश्लेषक कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने भारत के अजेय रहने की खुमारी उतार दी है। इंग्लैंड से हारकर भारत की सेमीफाइनल की राह थोड़ी मुश्किल हुई है। पूरी रिपोर्ट बाद में, पहले सुनिए एजबेस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड के हाथों भारत की हार के बाद क्या बोले भारतीय फैंस।
मैच तो बहुत अच्छा लगा, इंडिया के पास और दो मैचेस है।
नहीं, डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं है, एंड ऑफ द रेक इंडिया को एक झटका चाहिए था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे।
बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से, सो हम स्टिफ सपोर्ट कर रहे थे इंडिया को, अभी भी हमारी सपोर्ट इनके साथ ही है। हम देखते हैं कि आगे चलो इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो।
बर्मिंघम से ये आवाजें आप तक पहुंचाई BBC संवाददाता गगन सबरवाल ने, और आइए अब सुनिए इस मुकाबले का लेखा जोखा आदेश कुमार गुप्त की जुबानी।
सॉलिड लेसन है कि असब नेक्स्ट वेयर झाले तर आम्ही कसं प्रिपेयर करायचं यासाठी।
ये शब्द हैं भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के, जो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए जबरदस्त सबक है कि ऐसे हालात से निपटने की तैयारी कैसे करें। लेकिन उन्होंने तो 109 गेंदों पर 102 रन बनाकर अपनी तैयारी का सबूत दे ही दिया। लेकिन इसके बावजूद विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल भारत को मेजबान इंग्लैंड ने 31 रन से हरा दिया। वैसे भी जीत की जरूरत इंग्लैंड को ही ज्यादा थी, क्योंकि अगर वो भारत के हाथों हार जाता तो सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो जाता। लेकिन इंग्लैंड पिछली हार से सबक लेकर ऐसा जबरदस्त पलटवार करेगा, ऐसी भी शायद ही किसी को उम्मीद रही हो। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 337 रन बनाए। उसके सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो ने केवल 109 गेंदों पर 10 चौके और 6 छक्कों की मदद से 111, और जेसन रॉय ने 57 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 160 रन जोड़कर तमाम भारतीय गेंदबाजों के हौसले तोड़ दिए। रही सही कसर बेन स्टोक्स ने एक के बाद एक जबरदस्त स्ट्रोक खेलकर पूरी कर दी। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से केवल 54 गेंदों पर 79 रन बनाए। हालांकि भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने 69 रन देकर 5 और जसप्रीत बुमराह ने 44 रन देकर 1 विकेट लिया। लेकिन स्पिन जोड़ी यजविंदर चहल और कुलदीप यादव को तो जैसे उन्होंने लूट लिया। चहल ने 88 रन दिए, जबकि कुलदीप यादव ने 72 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। रोहित शर्मा ने माना कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत के बाद एक रणनीति के तहत युजविंदर और कुलदीप को जमने का मौका ही नहीं दिया।
When Kuldeep and Chahal came to bowl, they already got off to a decent start and they just didn't allow them to settle down. So which was, I think, a tactical move from their side against those R2 spinners.
इसके बाद जब भारतीय टीम जीत के लिए 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी तो रोहित शर्मा के 102, कप्तान विराट कोहली के 66, हार्दिक पांड्या के 45, महेंद्र सिंह धोनी के नाबाद 42 और ऋषभ पंत के 32 रनों के बावजूद निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 306 रन ही बना सकी। अब भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा।
रिपोर्ट सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। क्रिकेट का बुखार इन दिनों कुछ ऐसा चढ़ा है कि पाकिस्तान में हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार वस्तुल्लाह खान भी इससे बच नहीं सके। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी साप्ताहिक पाकिस्तान डायरी का ताना बाना इस बार क्रिकेट के इर्द गिर्द ही बुना है।
मैं भी उन क्रिकेट फैंस में शामिल हूँ जो कल चाह रहे थे कि इंग्लैंड हार जाए और इंडिया जीत जाए। इससे एक दिन पहले यानी शनिवार को हेडिंगले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच देख के भी पैसे वसूल हो गए कि कैसे एक नई नवेली टीम एक पुरानी टीम को हार की कगार तक ले आई और पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से ये मैच बचा पाया। खुशी थी कि जिस अफगान क्रिकेट टीम की राशिद लतीफ़, कबीर खान और इंजमाम उल हक जैसे कोचेज ने ट्रेनिंग की, वो कितनी तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नक्शे पे अपने निशानात छोड़ रही है। मगर इस दूध में उस वक्त मेंगनियां डल गईं जब सूचना मिली कि मैच से पहले और बाद में हेडिंगले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैंस ने एक दूसरे से हाथापाई की। अफगान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव असदुल्ला ने मैच से एक दो दिन पहले कहा कि अफगानिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान से बेहतर है और वह पाकिस्तान की मदद कर सकता है, और फिर अफगान टीम के कैप्टन गुलबदीन नायब ने एक भारतीय पत्रकार से बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान भले इस विश्व कप में अब तक सफल नहीं हो सका, मगर हम इस टूर्नामेंट में कई दूसरी टीमों के आगे बढ़ने के चांसेस ज़रूर ख़राब कर सकते हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसके बाद सोशल मीडिया पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के समर्थकों ने एक दूसरे पे गोबरबारी शुरू कर दी, जो अब तक हो रही है। कई अफगान पाकिस्तान को दुश्मन देश कह रहे हैं और कई पाकिस्तानी अफगानियों को नमक हराम और एहसान फरामोश। अगर ये गोबरबाजी सिर्फ आम लोगों तक रहती तो भी ठीक था, मगर इसमें शोएब अख्तर जैसे लोग भी कूद पड़े। उन्होंने पहले तो अफगानियों पर एहसान जताया कि तुमने क्रिकेट पाकिस्तान के कैंपों में हमसे सीखी, मगर होम ग्राउंड तुम्हारा नोएडा और देहरादून है। हम तुमसे अब भी प्यार करते हैं, मगर कल के मैच में कुचल के रख देंगे। फिर ये गंद एक दूसरे पे आतंकवाद फैलाने के आरोपों में ढलता चला गया, और जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से जीत गया तो उसके बाद ठंडा होने की बजाय ये तक कहा गया कि अगर अफगान टीम जीत जाती तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हज़ारों अफगान बच्चे कचरा चुन रहे हैं वो ये काम करने से इनकार कर देते। जिस दिन से दोनों तरफ से घटिया जबान इस्तेमाल करने का टूर्नामेंट शुरू हुआ, उस दिन अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी इस्लामाबाद की सरकारी यात्रा पे थे। अशरफ गनी और इमरान खान आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ाने की बातें कर रहे थे, मगर क्रिकेट के पागल फैन एक दूसरे का मुंह काला करने में जुटे हुए थे। गए वो दिन जब क्रिकेट एक दूसरे को जोड़ता था, आज क्रिकेट भी राजनीति के बल्ले से दूसरे के छक्के छुड़ाने का हथियार बन चुका है। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में जब एक काला अमरीकी एथलीट जेसी ओवेंस 100 मीटर की दौड़ जीता तो हिटलर गुस्से के मारे स्टेडियम से चला गया। आज अगर हिटलर होता तो उसे उठ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी, बस एक ट्वीट ही करना होता और नफ़रत यहाँ से वहाँ तक एक मिनट में फैल जाती।
ये थे पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार वस्तुल्ला खान। अमेरिका में बीते दिनों दिल दहलाने वाला एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 6 साल की एक सिख बच्ची ने मेक्सिको की सीमा से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश के दौरान भीषण गर्मी की वजह से रेगिस्तान में ही दम तोड़ दिया। ज्यादा जानकारी न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट में।
27 वर्षीय श्रीमती कौर अपनी 6 वर्षीय बेटी गुरप्रीत के साथ भारत से अमेरिका आकर न्यूयॉर्क में अपने पति के साथ रहना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने अमेरिका में प्रवेश के लिए गैर कानूनी होने के साथ साथ एक बेहद खतरनाक तरीका चुना। उनकी 6 साल की बच्ची गुरप्रीत की अरिजोना के रेगिस्तान में भीषण गर्मी के कारण मौत हो गई। शुक्रवार को न्यूयॉर्क में गुरप्रीत का अंतिम संस्कार किया गया तो माहौल बहुत गमगीन था। परिवार के वकील गुरपाल सिंह इस हादसे के बारे में बताते हैं।
वो क्रॉस कर रहे थे एरिजोना से द बॉर्डर, 4-5 थे, ओवर 100 degrees, यू नो, हीट, डेजर्ट, एंड द मदर वो पानी ढूंढने गई, एंड फॉर 2 days दे वर इन द डेजर्ट लॉस्ट, एंड द डॉटर कुडंट सरवाइव, द एडल्ट्स कुड सरवाइव।
अधिकारियों के अनुसार 11 जून को गुरप्रीत और उनकी माँ को मानव तस्करों ने अमरीका और मेक्सिको के बीच दक्षिणी सीमा पर छोड़ दिया और वहां से इन लोगों ने एरिजोना राज्य की सीमा में एक दूर दराज के रेगिस्तानी इलाके में अमरीकी सीमा में प्रवेश किया। इनके काफिले में 5 भारतीय लोग शामिल थे, जिनमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे थे। जब अमरीकी सीमा के अधिकारियों ने इस ग्रुप में शामिल 2 महिलाओं को हिरासत में लिया, तब उनसे गुरप्रीत के बारे में पता चला और सीमा अधिकारियों ने उस बच्ची की लाश ढूंढी। गुरप्रीत की माँ श्रीमती कौर को अप्रवासन विभाग ने हिरासत में लिया था, लेकिन उनकी बच्ची की मौत के कारण उन्हें अपने पति के साथ रहने के लिए न्यूयॉर्क जाने की इजाजत दे दी। अमरीका और मेक्सिको के बीच की सीमा पर अप्रवासियों के गैरकानूनी प्रवेश को लेकर अमरीकी सरकार सख्त रवैया अपना रही है। अब तक इस साल एरिजोना में सीमा के इलाके में प्रवेश करने की कोशिश में 70 लोग जान से हाथ धो बैठे, जबकि पिछले साल 127 लोगों की जान गई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018 में मेक्सिको से अमरीका में गैरकानूनी तौर पर दाखिल होने के बाद करीब 9,000 भारतीय नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया था। वकील गुरपाल सिंह भी असाइलम के ऐसे दर्जनों मामले देख चुके हैं।
हर महीने 2-4 और आ जाते हैं। ये इंक्रीज हो रहा है डेफिनेटली। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द अटॉर्नी जनरल न्यू लॉ पास की है कि जो इमिग्रेशन जजेस हैं वो बॉन्ड्स नहीं दे सकते। ट्रंप ने बहुत नमे जजेस हायर किए एंड मेनी ऑफ देम हैव नो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस. बहुत खराब सिचुएशन है.
अब न्यूयॉर्क के इमिग्रेशन कोर्ट में जल्द ही गुरप्रीत के माता पिता की पेशी होगी. दोनों का मामला अमेरिका में शरण लेने के बारे में है, लेकिन उनके वकील गुरपाल सिंह को ये भी डर है कि गुरप्रीत की मां को फिर से हिरासत में लिया जा सकता है. सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क.
जम्मू कश्मीर के दक्षिणी जिले अनंतनाग के पहलगाम इलाके में स्थित अमरनाथ गुफा के लिए सालाना यात्रा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं के पहले जत्थे के साथ आज से आरंभ हो रही है. श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट.
श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज पहलगाम के नुनमन और बालतल बेस कैंप से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो रहा है. कल रविवार को जम्मू से 2234 श्रद्धालु पहलगाम और बालतल के लिए रवाना हुए थे, जो पूरे उत्साह के साथ कश्मीर के बेस कैंप में रविवार शाम को पहुंच गए थे. पहलगाम के बेस कैंप पहुंचे राजस्थान के एक श्रद्धालु. जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के जवान तैनात किए गए हैं. श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर चरमपंथी सुरक्षा बलों को अक्सर निशाना बनाते रहे हैं. सीआरपीएफ के आईजी रविदीप शाही ने बीबीसी के साथ बातचीत में बताया कि यात्रा को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए हर कदम उठाया गया है.
हमने डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट रखे हुए हैं. हमने एक सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है और जम्मू से लेके पहलगाम तक और बालटाल तक का जो रूट है उसको सैनिटाइज करना थ्रू रोड ओपनिंग पार्टीज, क्विक रिएक्शन टीम्स हैं, तो ये हमने पुख्ता अरेंजमेंट किए हैं. इस बार
हर वर्ष अमरनाथ गुफा का दर्शन करने भारत के कोने कोने से लाखों भक्त कश्मीर पहुंच जाते हैं. हालिया दिनों में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दो दिन के कश्मीर दौरे के दौरान अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम देने के लिए सुरक्षा को चौकन्ना करने के आदेश जारी किए हैं. अमरनाथ गुफा दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिला के पहलगाम इलाके में 3,880 फीट की बुलंदी पर है. गौरतलब है कि वर्ष 2017 में चरमपंथियों ने अनंतनाग में अमरनाथ गुफा से लौट रही एक बस को निशाना बनाया था, जिसमें करीब 8 यात्री मारे गए थे और कई घायल हो गए थे. आज से लेकर अगले 46 दिनों तक श्रद्धालु अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे. माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर.
और आइए एक नजर दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर. कमलेश तैयार हैं.
आज के अखबार में हम इंडियन एक्सप्रेस देखें तो इसके पहले पन्ने पर एक तस्वीर है जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी खुद को लाठियों के हमले से बचा रही हैं. ये पुलिसकर्मी वन विभाग के अधिकारी हैं और ये तेलंगाना की तस्वीर है जहां एक भूमि विवाद को लेकर एक गांव में इस अधिकारी पर लोगों ने हमला कर दिया और इस हमले में तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायक के भाई को गिरफ्तार किया गया है. लगभग ऐसी ही एक खबर है जिसमें एक सरकारी अधिकारी पर बैट से हमला करने वाले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का बयान दिया गया है. उन्होंने जमानत पर बाहर आकर कहा है कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, पर वो गांधी जी के बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे. और जनसत्ता अखबार में इसी पर कटाक्ष करते हुए एक कार्टून बनाया गया है जिसमें आकाश विजयवर्गीय के हाथ में बैट है और गांधी जी के हाथ में लाठी और ऊपर लिखा है कि मैं गांधी के रास्ते पर चलूंगा. टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार मन की बात कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया है. उन्होंने इस बार स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही जल संरक्षण के लिए आंदोलन चलाने की बात कही है. और इसी अखबार में एक और खबर भी है कि एनडीए राज्यसभा में भी बहुमत की ओर बढ़ रही है. टीडीपी के 4 सांसद और आईएनएलडी के 1 सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. 5 जुलाई को 4 और सांसद बीजेपी में शामिल होने वाले हैं. हिंदुस्तान अखबार में खबर है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के नेता अजय चौटाला के पास मोबाइल बरामद हुआ है. जेल अधिकारियों ने शनिवार सुबह जांच अभियान चलाया था जिसमें मोबाइल पाया गया. जेल प्रशासन ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपकर उनके परिजनों से मिलने पर रोक लगाने की मांग की है.
शुक्रिया कमलेश. महाराष्ट्र के पुणे में दीवार ढहने की वजह से मारे गए बिहार के मजदूरों का कटिहार में उनके गाँव में अंतिम संस्कार कर दिया गया है. इस इलाके में गरीबों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो मजदूरी के लिए, रोजी रोटी के लिए महाराष्ट्र का रुख करता है. कटिहार से नीरज प्रियदर्शी की रिपोर्ट.
मेरा रवि नना है, मेरा रवि नना या पुणे से नना.
बघार के दो परिवारों ने पुणे दीवार हादसे में अपने अपने चार सदस्यों को खो दिया है।
बेटा हमारा सबसे चारों जवान है, हमारा और कोई नहीं है मुख में आगे देने का, कोई नहीं मेरा घर में बाती जवान का।
जिन लोगों के अपने घरों में दीवार नहीं है वो दूसरे की दीवारों के तले दबकर मर गए।
सुनते सुनते दीवार गिर गया, अचानक हम कौन दीवार गिरा, मतलब दीवार गिरने का कोई कारण नहीं था, अचानक हम उठे 2 बजे रात में, दीवार नहीं गिरा है, पाछे तरफ जो दीवार बना था वो दीवार गिर गया।
गांव वालों से बातचीत के दौरान हमें पता चला कि उस इलाके में मजदूरों का एक बड़ा तबका है जो अच्छी मजदूरी के लिए मुंबई, पुणे और बेंगलोर जैसे शहरों में पलायन कर गया है। स्थानीय पत्रकार आनंद मोहन इसका मुख्य कारण गरीबी और बेरोजगारी मानते हैं।
यहाँ इस गांव के बघर गांव के जो अधिकतर लोग हैं गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास जमीन है तो वो तो खेतीबाड़ी करते हैं, जिनके पास जमीन है वो मजदूरी करते हैं और अधिकतर लोग मजदूरी करते हैं, बाहरी खाते हैं। और ये यहाँ आपको मनरेगा योजना है उसमें भी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। मनरेगा का काम हो रहा है लेकिन उस स्तर पर नहीं हो रहा है कि सभी को रोजगार मिले। मुश्किल से 200-150 लेबर को ही काम मिलता है, बाकी बात वो काट लेके धरे के धरे रह जाते हैं और मजबूरी में उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है।
जिला प्रशासन ने पीड़ितों के आश्रितों को आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ में उन्हें वरीयता दी जाएगी। नीरज प्रियदर्शी, BBC कटिहार।
झारखंड के बारे में बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि मॉब लिंचिंग के लिए झारखंड को बदनाम करना ठीक नहीं है। क्या झारखंड को बेवजह बदनाम किया जा रहा है या ये राज्य वाकई मॉब लिंचिंग का अड्डा बन चुका है? रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
सदन में कहा गया कि झारखंड मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस का अड्डा बन गया है, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना ये शोभा देता है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ताजा वक्तव्य के बीच एक कड़वा सच यह भी है कि झारखंड में सत्तासीन भाजपा की मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान यहां मॉब लिंचिंग में कम से कम 18 लोगों को मार दिया गया, इनमें से 11 मुसलमान थे। पिछले 3 साल के दौरान यहां भीड़ द्वारा हत्या किए जाने की कुल 10 घटनाएं हुई। इनके स्पीडी ट्रायल के बावजूद सिर्फ 2 मामलों में ही सजा सुनाई जा सकी। अंजुमन इस्लामिया के झारखंड प्रमुख इब्रार अहमद कहते हैं,
और देखिएगा कि सोशल बायकॉट भी जगह जगह पे हो रहा है, मारने वाला अगर 20 आदमी है तो 2 आदमी भी छुड़ाने वाला नहीं होता है।
झारखंड की मौजूदा रघुवर दास सरकार के दौरान मॉब लिंचिंग की पहली घटना मार्च 2016 में लातेहार जिले के बालूमाथ इलाके में हुई। तब वहां के झाबर गांव में बजरंग दल और गौ क्रांति दल से जुड़े लोगों की एक भीड़ ने मजलूम अंसारी नामक एक पशु व्यापारी और उनके सहयोगी 12 साल के इम्तियाज खान नामक बच्चे की पीट पीट कर हत्या करने के बाद उनके शवों को फांसी का फंदा बनाकर पेड़ से लटका दिया था। उसके बाद ऐसी कई घटनाएं हुई और मजलूम अंसारी से शुरू लिंचिंग का यह सिलसिला हाल में मारे गए तबरेज अंसारी तक पहुंच गया। इसके बावजूद सरकार यह गारंटी देने में अब तक नाकाम साबित हुई कि लिंचिंग की अब और घटनाएं नहीं होंगी। चर्चित सोशल एक्टिविस्ट सिराज दत्ता कहते हैं कि इससे भाजपा सरकार की वास्तविक मंशा का पता चलता है।
हम खुद ये तबरेज के मामले में गए थे फैक्ट फाइंडिंग में, तो हम लोग जब धटकीडी गांव में थे जहां लिंचिंग की घटना हुई, हम लोग जब वहां कुछ लोगों से बात कर रहे थे, वहां के जो हिंदू है वो गांव हिंदू गांव है जहां हुआ, उसी समय कुछ बाइक और गाड़ी में तिलकधारी टीकाधारी सब पहुंच गए। हम लोग के सामने ही उन लोग को बोला कि चोर को क्या चुम्मा लेके भेजिएगा कि सजा दीजिएगा।
हालांकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल इससे इत्तेफाक नहीं रखते।
कानून बना हुआ है कि किसी भी प्रतिबंधित मांस को या पशु को ले जाना अपराध है, और वह अपराध वो क्यों करता है, हर घटना मॉब लिंचिंग नहीं है।
गैर सरकारी संगठन ह्यूमन रिसोर्स लॉ नेटवर्क द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के मुताबिक लिंचिंग के अधिकतर मामलों के अभियुक्तों का वास्ता दक्षिणपंथी संगठनों या फिर सीधे सीधे भाजपा से है। यहाँ यह चर्चा वाजिब है कि साल 2017 में रामगढ़ में मारे गए अलीमुद्दीन अंसारी की लिंचिंग के मामले में भाजपा के कुछ स्थानीय नेताओं को उम्र कैद की सजा तक हो चुकी है। इनमें से कुछ लोगों को जमानत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के मंत्री जयंत सिन्हा ने माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया था। भाजपा के एक और सांसद निशिकांत दुबे ने भी गोड्डा जिले में हुई मॉब लिंचिंग के अभियुक्तों को आर्थिक मदद देने की सार्वजनिक घोषणा की थी। रवि प्रकाश, BBC रांची।
और अब साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आज से टेनिस की दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन शुरू होने जा रहा है। पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच और महिला एकल वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी को शीर्ष वरीयता दी गई है। आज ही नोवाक जोकोविच का सामना जर्मनी के फिलिप कोल श्राइबर से होगा। उनके अलावा स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका, ग्रीस के स्टेफानोस स्तिसिपास और महिला एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल जापान की नाओमी ओसाका, अमेरिका की वीनस विलियम्स और डेनमार्क की कैरोलिना वोज़्नियाकी अपना दमखम दिखाएंगी। और अब समीक्षा।
इंडिया हैव कॉज्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपसेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ऑल स्पोर्ट।
कल इंग्लैंड से हारकर भारत विश्व कप में अजय नहीं रहा। बड़ी मुश्किलें, पाकिस्तान ने की वापसी और अब एक एक मुकाबला होगा जोरदार।
इंग्लैंड के लिए तो बहुत मायने हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट बरकरार है। आखिरी मैच में वो जीतते हैं या हारते हैं न्यूजीलैंड से, उस पे उनका वर्ल्ड कप डिपेंड करता है। और भारत के हार की बहुत मायने रखता है क्योंकि प्रेशर तो बन ही गया। अब भारत को बांग्लादेश से अपना मैच जीतना है हर हालत में। अगर हारता है, मान लीजिए रिजल्ट हो सकता है, बांग्लादेश बुरी टीम नहीं है, तो श्रीलंका वाले मैच में तो करो या मरो वाली बात आ जाएगी।
ये शब्द है क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली के। और कल इंग्लैंड के हाथों भारत की हार ने विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के समीकरणों को अगर मगर किंतु परंतु में बदल दिया। ऑस्ट्रेलिया अंक तालिका में 14 अंकों के साथ सेमीफाइनल में पहुंचकर चैन की बंसी बजा रहा है, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड 11-11, इंग्लैंड 10 और पाकिस्तान 9 और बांग्लादेश 7 अंकों के साथ सेमीफाइनल की दौड़ में है। पाकिस्तान ने तो गजब की वापसी करते हुए पिछले 3 मैच जीतकर अपनी उम्मीदों को जगाया। अफगानिस्तान के खिलाफ नाबाद 49 रन बनाकर जीत दिलाने वाले पाकिस्तान के इमाद वसीम से एक संवाददाता द्वारा पूछा गया सवाल बेवजह नहीं था।
पाकिस्तान की टीम लोगों को हार्ट अटैक देना कब छोड़ेगी?
पता नहीं, शायद भाई अल्लाह खैर करे, हुआ होगा तो पूरा मैच देख लेते ना।
उधर कल रोहित शर्मा ने भी गंभीर सवाल का जवाब चुटकी लेते हुए दिया। जब उनसे पूछा गया हार्दिक पांडे की जगह ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करने क्यों भेजा गया।
यू ऑल गाइस वांटेड ऋषभ पंत टू प्ले राइट राइट फ्रॉम इंडिया।
खैर ये तो हंसी मजाक हुआ, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जान गले में अटकी हुई है। एक दो जीत या एक हार उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचा या बाहर कर सकती है। विजय लोकपल्ली कहते हैं,
पाकिस्तान और बांग्लादेश बाद में, उससे पहले भारत बांग्लादेश से खेलेगा। अगर बांग्लादेश हार जाता है तो पाकिस्तान बांग्लादेश, अगर कहीं भारत बांग्लादेश से हार जाता है फिर तो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले मैच कमाल की उम्मीद रख सकते हैं। प्रेशर होगा इतना क्योंकि दोनों में से एक टीम आगे निकल सकती है। नजर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड मैच में भी रखनी पड़ेगी क्योंकि वो भी बड़ा क्रैकर ऑफ अ मैच, तो मुझे लगता है इंग्लैंड न्यूजीलैंड बड़ा जबरदस्त मैच होने वाला है।
कहां तो 2-3 दिन पहले विश्व कप के मुकाबले नीरस लग रहे थे और अब यही जान से प्यारे लग रहे हैं। शायद इसे ही कहते हैं क्रिकेट की अनिश्चितता। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही, और इसी के साथ कुछ ही देर में बजने वाले हैं भारत में सुबह के 7। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन मुख्य समाचार चलते चलते एक बार फिर सुनते हैं कमलेश मठेनी से।
सूडान में डॉक्टरों के अनुसार सैन्य शासन के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों में 5 लोगों की मौत हो गई। यहां हजारों लोग नागरिक शासन की मांग करते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मेक्सिको से अमेरिका जाने वाले रियो ग्रांड नदी पार करते हुए डूबने वाले पिता और बच्चे का मृत शरीर एल सल्वाडोर पहुंच गया है। उन्हें सोमवार को दफनाया जाएगा। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी संख्या में हुए गे परेड मार्च को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। यह परेड मैनहट्टन से शुरू होकर स्टोनवॉल इन पर खत्म हुई। वहीं तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुई ऐसी ही गे प्राइड परेड में पुलिस और लोगों में झड़प हो गई। वेनेजुएला में विपक्ष के नियंत्रण में चल रही संसद में सुरक्षा बलों की हिरासत में हुई एक सैन्य अधिकारी की मौत की जाँच की मांग की गई है। सीरिया में मीडिया का कहना है कि इजरायली युद्धक विमानों ने होम्स और राजधानी दमिश्क शहर में सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण भारतीय समयानुसार हर दिन की तरह शाम 7:30 बजे दिन भर।
फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए BBC हिंदी .com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।